الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج هم إن شاء الله تعالى سورة إسراء آيات نمبر 90 سے 111 تک، يعني اس سورة کو مکمل کریں گے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے مضمون میں ہم آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس طرح بھیجا کہ لوگوں کے لیے وہ ایک نصیحت بنے، اور ایسا انداز اختیار کیا جس میں پھر پھر کے بات بیان کی گئی، طرح طرح سے باتیں سمجھائی گئیں، مگر لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے نہیں مان کے دیا، انکار ہی کیا، سمجھے ہی نہیں، یعنی بہت کہنے کے باوجود، طرح طرح سے سمجھانے کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. اور ان کا رویہ کیا تھا یہ آگے آ رہا ہے. وقالو، اب یہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے کہا. اور یہ آیت 90, 91, 92, 93 یہ سب آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں. ایکچولی یہ سارے مطالبات ہیں یہاں سے لے کے یہ ان ساری آیات میں، کہ انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے، کیا انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ایمان لانے کے لیے، کہ ہمیں کیا دکھایا جائے ہم تب ایمان لائیں گے. ایمان حالانکہ شرطوں کے ساتھ نہیں باندھا جاتا، ایمان تو دل کے مان جانے کا نام ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر ان کو یہ تھا کہ ہمیں کوئی معجزے ایسے دکھائے جائیں جو کہ بہت ہی سپر نیچرل قسم کی کوئی چیزیں ہمارے سامنے ہوں، کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز ہو جائے تو تب ہم مانیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مطالبے کرتے تھے، کیا کس قسم کے معجزے وہ مانگتے تھے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز نہیں آپ پہ ایمان لائیں گے. جیسے بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، ہم تیرے اوپر کبھی نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ تو ہمیں دکھا نہ دے اللہ تعالیٰ کو سامنے. کیا تو ہر ایک قوم نے اپنی اپنی طرح کی چیزیں کہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک کیا، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ نکال دے، یعنی تب بھی ہم مانیں گے. آپ کو پتا ہے عرب کی سرزمین جو تھی وہ خشک تھی، اب انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی کام ہونا چاہیے کوئی زمین سے چشمہ نکل آئے، جو یہاں پہ تو کبھی نہیں تھا. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر ہو جائے ایک باغ تیرے لیے، چلو اور کچھ نہیں تو تیرے لیے ہی کچھ فائدہ ہو جائے، کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. اس زمانے میں لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کے پاس باغ ہو، کوئی باغوں کا مالک ہو، تو تیرے لیے ہی کوئی باغ ہو کہ ہم دیکھیں. ایکچولی لوگ نا ان چیزوں سے بہت ہمیشہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ کسی کوئی بہت بڑی چیز ہو. مثال کے طور پہ آج کہیں کہ کسی کے جی پرائیویٹ جیٹس چل رہے ہیں، کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، کسی کے پاس ایسی چیز ہے، تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، کھڑے کو دیکھنے لگیں گے، اس کو بہت بڑی چیز سمجھیں گے. تو یعنی کہ تو بڑی چیز بن جائے، تیرے پاس باغ وغیرہ ہوں، تو فجر الانہار خلالہ تفجیرا، پھر تو پھاڑ دے دریا یا نہریں ان کے درمیان، اس باغ میں کھجوروں اور انگوروں کے درختوں کے باغ میں نہریں جاری ہو جائیں. अवतुस्कित समा, या तो गिराए आसमान को, कमा जामता आलेन किसफन, जैसे कि तू हमारे पर दावे करता है, बड़े दावे करता है ना कि आसमान गिर जाएगा और कि ये लोगों बाज आ जाओ, ये ना हो कि आसमान तुम्हारे पर गिर जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए, क्योंकि सूरह सबा में आता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जमीन फट जाए या आसमान टुकड़े टुकड़े होके तुम्हारे पर गिरा दिया जाए। तो जब ये बातें इनके सामने आई तो इन्होंने बजाय मान लेने के उल्टा क्या कहा, उन्होंने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी, ऐसा करना जैसे तू कहता है उस तरह करके दिखा देना, अल्लाह ताला की कुदरत से डरे नहीं। आप देखिए सूरह मुल्क में भी आता है ना, अमिन्तु मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, कि तुम्हारे पर पत्थरों की बारिश कर दे अल्लाह ताला, आसमान से पत्थर बरसने लगे। तो वो कहते थे तुम ये बड़े दावे करते हो ना, तो गिरा दो हमारे पर आसमान, औताती बिल्ला, या तू ले आ अल्लाह ताला को और फरिश्तों को भी कबीला हमारे सामने, बिल्कुल हमारे सामने लाए ला उनको, तब हम मानेंगे। औ यकून लका बैतुन, या हो तुम्हारे लिए एक घर, मिन ज़ुखरुफ़, फिन सोने का घर हो, एक ऐसा पहला सू जो सोने का बना हो, तो हम देखें तो फिर हम कहें कि वाकई ये बहुत बड़ा आदमी है। और तरका फिसमा, या तू चढ़ जाए आसमान पे, वलम नोमिना, लेकिन हम फिर भी मानेंगे नहीं जब हम तुझे आसमान पे देखेंगे, तेरे चढ़ने को नहीं मानेंगे, रुकिए का तेरे चढ़ने को, हत्ता तू नजिल आलेना किताब नकराऊ, जब वो तो वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, हमने तब भी मानना नहीं है कि तू आसमान पे होके आया है या कुछ है। लेकिन जब तक तू वहां से हमारे लिए किताब ना उतार के ले आए जिसको हम पढ़ें, हम देखें, ये नहीं हम मानेंगे कि तेरे दिल के ऊपर वही उतरी है, तू किताब लेकर आ, हम उसको पढ़ें, फिर उसके बाद हम समझेंगे, फिर हम मानेंगे। ये आपको इसके पीछे क्या साइकी नजर आ रही है, यानी ये वो कौम है जिन्होंने मानना नहीं होता असल में, फिर वो इस किस्म के मुतालबात करते हैं सिर्फ हंसी उड़ाने के लिए, सिर्फ तहकीर करने के लिए, जलील करने के लिए दीन को, उन इसके अंदर मीन मेखे निकालने के लिए, देखा देखा हमने तो कहा था कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतराजात करने के लिए, इनका मकसद हिदायत नहीं होता। पिछली भी कौमों ने मुतालबात किए, क्या हुआ, कोई हिदायत तो नहीं पाए। तो ये हिदायत इस तरह से नहीं आती, इसी तरह से नहीं मिलती कि लोग मुतालबात करें और उसके बाद कहें कि अच्छा अच्छा हमने तो देख लिया तो हम मान जाए, नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। इसको ईमान लाना होता है, उसके लिए बेशुमार निशानियां हैं, ईमान लाने के लिए, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि एकदम से एक सुपरनेचुरली चीज हो। और शोबदेबाजियां, ऐसी चीजें, सुपरनेचुरल चीजें लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए कि हिदायत में तो इंटरेस्ट होता नहीं है, ऐसी चीजें बड़ी है उनको अच्छी लगती हैं, मजा आता है ना इसमें, कि कोई जादुई करतब टाइप कोई करतब दिखाए आपको। और अब आपके पास तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, ना कोई सोने का महल था कि लोग जी आगे इकट्ठे हो जाएं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाएं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई फरिश्ते चलते थे, कोई कतार दर कतार फरिश्ते, कोई बॉडी गार्ड्स हो, ना आपकी सवारी कुछ ऐसी थी कि जो जिसको देख के लोग मेस्मराइज हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, जो बजाहिर आज की दुनिया में भी लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। तो इन सारी ये बातों का जवाब अल्लाह ताला ने दिया, कह दीजिए ए नबी आप इनको जवाब दें, क्या जवाब, देखें कितना मुख्तसर है, सवाल कितने सारे और जवाब सुबहान और रब्बी, पाक है मेरा रब, हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, क्या या नहीं, नहीं हूं मैं मगर एक रसूल, एक बशर, एक इंसान हूं और एक रसूल। तो जवाब में मुख्तसिर बात की गई, उनकी एक एक बात का जवाब नहीं दिया गया, बल्कि पाक है मेरा रब, सुभान का मतलब क्या होता है, हर किस्म के ऐब नक्श पाक और हर किस्म के कमालात का मजमुआ, सारे किस्म की अच्छी सिफात और कमालात उसमें है और हर किस्म के ऐब से वो पाक है। यानी जितनी बातें तुम कर रहे हो, जितने मुतालबात तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इनको पूरा नहीं कर सकता। तो एक कुन कह के पूरा कर सकता है, मगर उसका ये कानून नहीं है कि इस तरह से करे कि जो कोई कहता रहे अब ये करके दिखाओ तो वो वैसे हो जाए, वो करके दिखाओ वैसे हो जाए। इस तरह तो शुरू हो तो फिर तो हर कोई कोई ना कोई मुतालबा लेके कल को खड़ा हो जाएगा, नहीं जी ये दिखाएं वो दिखाएं फिर हम मानेंगे, वो दिखाएं फिर हम मानेंगे। अब वो याद होगा हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह मायदा में भी कि ईसा अलैहि सलाम के साथियों ने जब कहा था कि एक मायदा हमारे लिए उतरे आसमान से तो हम उसमें से खाएं पिए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब कोई मैं उतारने को उतार दूंगा लेकिन जब ऐसे कोई मुतालबा करके और फिर उसको कोई मौजजा दिखा दिया जाए, वो चीज पूरी हो जाए और वो कौम ईमान ना लाए तो फिर वो अजाब होगा कि कोई कभी किसी को नहीं हुआ। इसी तरह जब इन्होंने कहा सोने का पहाड़ बन जाए, सफा पहाड़ी को सोने का बना दें, ये कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करनी शुरू की थी लेकिन फरिश्ता आया और उसने यही कहा कि या तो ये सोने का पहाड़ अल्लाह ताला बना देता है लेकिन फिर अगर कोई ना माना तो फिर वो अजाब होगा कि जो कभी नहीं किसी को हुआ। और यहाँ फिर इनके लिए तौबा का दरवाजा अल्लाह ताला खोल देता है, इनको मोहलत दे देता है लेकिन मौजजा नहीं फिर दिखाएंगे, इसने मानना है ऐसे ही माने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी बात को चूज किया था। यहाँ पे भी देखिए इनकी सारी बातों का जवाब मेरा रब पाक है, मैं तो सिवाय एक इंसान रसूल के और कुछ नहीं, नहीं मैं यानी मैं और कुछ भी नहीं हूं इसके सिवा कि एक इंसान हूं रसूल। मैं कोई सुपरनेचुरल चीजें नहीं कर सकता, मैं कोई जैसे ऐसी जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं वो मेरे पास नहीं है। ये ऐसी चीजें थी ना जो सुपरनेचुरल कोई चीज है। और इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। एक तो ये कि हम अपने अकीदे को सही करें, जो हम समझते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसी पावर्स रखते थे जो इंसानी नहीं है मगर जो मर्जी इस तरह से चाहे कर लेते वैसे चाहे कर लेते, ऐसे नहीं है। दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चाहे अल्लाह ताला से जो मर्जी मनवा ले, चलती आपकी ही है और मोहम्मद का उसमें किसी में शेर में भी कहते हैं ना अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, अस्तगफिरुल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के अंदर इतनी ताकत है कि अगर अल्लाह पकड़ लेना तो आप छुड़ा सकते हैं लेकिन आप ने पकड़ लिया तो कोई भी नहीं छुड़ा सकता, तो शिर्क और क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे फरमाते हैं मैं एक बशर हूँ एक रसूल, और ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप फरमा दें, वरना अल्लाह ताला फरमाते कि नहीं आप तो बशर तो है ही नहीं है, आपके पास तो इतनी ताकतें हैं लेकिन आपने ये करके नहीं दिखाना, नहीं ए नबी आप कह दें। और जगह जगह कुरान कहता है ये बात कि आप फरमा दें कि मैं एक बशर रसूल। दूसरी हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की कि हाय अगर मैं कह दूंगा कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं तो इतनी शर्म की बात है कि तुम ये भी नहीं कर सकते, लोग कहेंगे तुम्हारे अंदर इतनी सी भी ताकत नहीं है, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना ये कर दो या ये कर दो या ये, बहुत सारी ऑप्शंस दी हैं तो तुम इतना भी नहीं कर सके, कोई एक चीज ही पूरी कर देते। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें कोई आर नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी ये कहने में कि मैं एक इंसान हूं लेकिन रसूल हूं, मेरे पास वही आती है अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। रसूल कौन होता है? भेजा गया। जो रसूल होता है वो भेजा हुआ होता है, वो खुद इख्तियार नहीं रखता किसी चीज का, सारा इख्तियार उसका होता है जिसने भेजा है। तो ये जो हम समझते हैं कि बस रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रसूल हो अल्लाह ताला की तरफ से बना के भेजे गए तो हम समझते हैं कि पता नहीं जो अल्लाह वाले होते हैं वो जो चाहे कर देते हैं, उनके एक हाथ के इशारे से किसी को औलाद मिल सकती है, किसी को सेहत मिल सकती है, किसी की हाजत पूरी हो सकती है, किसी की मुश्किल आसान हो सकती है। इसीलिए तो हम आज भी जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे जाके मांगते हैं खड़े होकर उनकी तरफ मुंह करके दुआएं मांगते हैं उनके रोजा की तरफ। आप नहीं देना है, आप ही झोली भर दे मेरी। तो इनकी क्यों नहीं झोली भर दी? ये तो यही कह रहे थे ना, हम ईमान ले आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी हिर्स थी इनके ईमान लाने में। तो ये हमें पता चलता है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी पावर्स नहीं थी कि ऐसे इख्तियार के जो चाहे करते रहे। आप एक रसूल थे, एक बशर थे। बशर एक इंसान होता है, मगर साथ साथ अल्लाह के पैगंबर थे जिसकी वजह से दूसरे इंसानों से अबव थे। मगर इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि वो खुद ही कुछ कर सकते तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी हम ये समझें कि आप सरसर ने इसमें शर्म नहीं महसूस की ये बताने में। अगर आज हमसे कोई कोई बात पूछता है, कोई सवाल करता है, इनसे सवाल किए गए ना, अगर हमसे आज कोई सवाल करता है तो हमें बड़ी शर्म आती है ये कहने में कि मुझे नहीं पता, पूछ के बता दूंगी, या मैं किसी किसी जगह से पढ़ के बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता। ये कहना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि दूसरा कहेगा हाय इसको पता ही नहीं। यहां पे भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवालात के जवाबात में हाथ उठा दिए कि मैं तो एक बशर हूं, रसूल हूं। ये नहीं फरमाया कि नहीं मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं होती अगर कोई आपसे कोई सवाल करे और आपको नहीं आता। इसी तरह हमें ये भी बात समझ आती है यहां से कि किसी का अगर आपको समझ आ जाए ना कि ये बंदा सिर्फ मुझे बातों में उलझाना चाहता है, या ये बंदा सिर्फ मजाक उड़ाना चाहता है, ये इसके लिए सवालात कर रहा है, इसको हिदायत नहीं चाहिए। एक होता है ना, एक सवाल होता है जिसमें वाकई कोई इंसान कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। एक आपको पता चल रहा होता है कि इसका सवाल करना इसके लिए नहीं है, इसका सवाल करना इसलिए ताकि कोई एतराज करे। तो आप कोशिश करेंगे उसके सवाल का जवाब ऐसा ना देंगे पकड़ के बैठ जाएं और उसके एक एक सवाल का जवाब देते रहे। यहां पे आप देखें सवाल इतने और जवाब कितना मुख्तसर, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, कोई तमहीद नहीं है, नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये वाली तो पहले कौन सा ऐसे था, ये कौन सा क्या था, अच्छा फिर आसमान अगर गिर गया फिर से सोचो तुम्हारे पर क्या होगा, फिर अगर सोने का घर बना तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसे कुछ बात ही नहीं, बस मुख्तसिर बात, मैं इंसान हूं रसूल हूं, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो देखिए इस तरह से जवाब होते हैं। आपने उलझना नहीं है ऐसे लोगों के साथ, आपने उनके साथ बहस नहीं शुरू कर देनी, आपने उनके साथ तू तकार नहीं शुरू कर देनी कि टिट फॉर टैट, एक वो बात करें फिर आप बात करें, जब पता चल गया ना कि इन्होंने बात समझने के लिए नहीं ये कर रहे, बल्कि सिर्फ इनका मकसद है एतराजात करना, तो मत उलझे। हर एक सवाल इस काबिल नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए, याद रखिए। जहां ऐसे लोग आ जाए जिनको ये एतराज हो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये कैसे है, वो कैसे है, इनका सिर्फ मकसद होता है इस तरह की बातें बनाना। फिर ये आप देखें कि यहां पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सिर्फ रसूल हूं और बशर हूं, और बशर मानने को आज बहुत से लोग तैयार नहीं। लिहाजा ये मिसकंसेप्शन भी दूर कर लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नूर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे थे कि बस सुपर नेचुरल कोई चीज थे, नहीं बशर थे, ठीक है। ऐसे नहीं था कि आप हर जगह मौजे दिखाते फिरते थे जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। फिर हम ये भी देखें कि इन लोगों के पास सबसे बड़ा मौजा जो था वो कुरान था, मगर उसकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं थी। और किस चीज की तरफ तवज्जो थी कि कोई ऐसी ऐसी कोई चीजें दिखाई जाएं, कोई ऐसी करामात होनी चाहिए, कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जादुई किस्म की हों, उस तरह की होनी चाहिए, कोई करतब टाइप दिखाएं, कोई ऐसा कर दें, कोई ऐसा कोई जैसे वो जादूगर नहीं, कहीं एक जो तरफ से वो रुमाल निकाल लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कबूतर निकाल लेता है, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना। कुरान की तरफ नहीं आते थे, ये सबसे बड़ा मुजजा था। लेकिन आज भी आप देखें ज्यादा लोगों की तवज्जो किस तरफ है, कि वो इस तरह की कोई बस ऐसी चीजें देखने के, ऐसा कुछ हो जाए तो ये मेरा काम हो जाए, ऐसे कर लें तो ये कर लें, कोई कोई ऐसी चीज ना, कोई मुख्तसर सी कुछ ऐसी चीज बता दी जाए, इस तरह से ये मेरे सारे काम बन जाए, और कुरान पाक को हिदायत के लिए लेना, ये नहीं, इतने इंटरेस्ट इसमें नहीं है। करामात की किताब ही बनाया हुआ ना आज कुरान को, हिदायत की किताब तो नहीं समझा हुआ। इससे कुछ ऐसा हो जाए कि बस दुनिया पलट जाए, काया पलट जाए, कुछ गैब से ही कुछ चीजें होनी शुरू हो जाए, मेरी मसले मेरे हल हो जाए, बस ये हो। पिछले दिनों मुझे कोई खातून मिली, तो जब उनको कुरान पाक की तालीम की दावत दी, तो मेरे से पूछने लगी कि आप वजीफे बताती हैं। यानी आप सोचे हमारी साइकी क्या बन गई है, कि बस वजीफे हैं, कोई झाड़ फूंक है, कोई ऐसी चीज उग जाए जिससे हमारे ये काम बन जाए, तो बस फिर कुरान को हम लेंगे, वरना कुरान को हिदायत के लिए नहीं लेना। और फिर जो आते हैं कुरान पाक की तरफ, उनको भी ऐसे लगता है कि बड़ा एहसान झाड़ है, कि बस हमने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दी ना, अब तो हमारी जिंदगी में ऐसा जादू हो जाए कि कोई मसला ही ना हो, कोई तकलीफ ही ना हो, कोई परेशानी आए ही ना। और अगर कोई आ जाए तो क्या फायदा फिर हमारा कुरान पढ़ने का, हमारे साथ ये मसला क्यों हो गया, वो आप अल्लाह तला पे एहसान कर रहे हैं क्या? कुरान पाक इसलिए तो नहीं है कि बस इसके उसे कोई करामात हो जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई इस तरह हो जाए, सब मसले हल हो जाने चाहिए। जो कुरान पढ़ता है उसके ऊपर कोई मसला आना ही नहीं चाहिए कभी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो बड़े मसाइल हुए, फिर क्या कहेंगे, उनसे ज्यादा कौन कुरान पढ़ने वाला था। वो भी कहते थे कोई नहरें निकाल दें, कुछ ऐसे कर दें, कुछ हमारी जिंदगी ही बदल जाए, कुछ चश्मे ही जारी हो जाए, यहाँ पे ग्रीनरी हो जाए, सब्ज हो जाए, पहाड़ सोने का बन जाए, ये पहाड़ चलो हम रिच ही हो जाए। यानी वो तीन इसलिए है, जो असल मौजा है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। वमा मना अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा, नहीं लोगों को रोका ईमान लाने से जब उनके पास हिदायत आ गई, कुरान आ गया, तो उनको ईमान लाने से कौन सी चीज रोकती थी? अब तो हिदायत आ गई थी, क्या चीज ने उनको रोका? सिर्फ एक चीज ने रोका, इल्ला अन कालू अबाथ अल्लाह बशर रसूल, कि उन्होंने कहा कि कैसे अल्लाह ताला ने एक इंसान को रसूल बना के भेज दिया, ये कैसे हो सकता है? और ये हर जमाने के काफिरों का यही प्रॉब्लम रहा है कि पैगंबर इंसान, यानी उनको ये लगता है कि इंसान तो एक हकीर सी चीज है, घटिया मखलूक है, ये पैगंबर कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने इसको घटिया नहीं बनाया, उसको तमाम मखलूकात से ऊपर बनाया, हत्ता के फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम इंसान को दे दिया, जब फरिश्तों से सजदा करवा दिया इंसान। लेकिन इंसानों ने खुद इंसानियत को इतना नीचा समझा कि अगर कोई नबी है तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो उसको कोई फरिश्ता होना चाहिए था। उनके लिए यही बात इतनी मुश्किल थी हजम करनी कि कैसे हो सकता है रसूल है इंसान, ये तो हमारे जैसा इंसान है, ये रसूल कैसे हो सकता? ये कुरान पाक में ये बात है कि वो कहते थे कि ये कैसा रसूल है जो खाता है पीता है बाजारों में घूमता है, ये कैसा रसूल है, इसको तो नहीं ऐसा होना चाहिए। अब जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया नबी आपसे पहले जितने भी रसूल आए वो सब खाना खाते थे और बाजारों में फिरते थे। ईसा अलैहि सलाम के बारे में लोगों ने कहा खुदा का बेटा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तो खाते पीते हैं, खाना पीना इंसानियत का, इंसान ही खाता पीता है ना, एक अल्लाह ताला की जात है जो खाने पीने से और उन चीजों से पाक है, और वो अपनी जरूरियात के लिए बाजारों में भी जाते थे। अच्छा और तो छोड़े, पैगंबर तो बहुत बहुत बुलंद है, हम तो उनकी पैरों के खाक के बराबर भी नहीं, और इसके बावजूद आपको ये सुन के हैरत होगी कि कि बाज लोग जैसे मेरे जैसे इंसान जो आम लोग हैं, इनके बारे में भी कोई दीन का काम कर रहा हो ना, तो उसके बारे में भी क्या सोचते हैं। इतनी हैरत से किसी ने पूछा, आप भी बाजार जाती हैं, मॉल जाती हैं आप? मैंने, ऐसे लगता है कि मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। और किसी ने हैरानगी से कहा कि अच्छा आप खाना पकाती हैं? शायद हमारे यहाँ आज भी यही कॉन्सेप्ट है, जो दीन का काम करने वाले हैं इनके शायद कोई मुरीद होते होंगे जो इनकी टांगे दबाते होंगे और इनका खाना पकाते होंगे, या फिर ये इनके लिए कोई मनोसलवा उतरता होगा, या फिर शायद खाते पीते ही नहीं है, ऐसे ही भूखे ही रहते हैं, खा ही नहीं है। क्या बेचारे अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, इनको तो खाना पीना ही नहीं चाहिए, या फरिश्ते आके इनके काम करते होंगे, या बाजार जाना ये तो इनकी शान के खिलाफ है, इनका क्या काम है बाजार जाने का। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं ना, वो भी इंसान है, उनकी भी वैसी जरूरियात है जो कोई दीन का काम करे, या कोई पैगंबर तक है तो वो भी इंसान है, खाएंगे पिएंगे भी, जिएंगे कैसे वरना, बाजार भी जाएंगे, उनकी कोई जरूरियात भी होंगी। क्यों हम ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते? इसीलिए तो फिर हम सोचते हैं कि जो दीन पे अमल करना है या दीन का काम करना है या दीन से जुड़ना है ना, वो कोई खास किस्म के कोई एलियन टाइप लोग होंगे जिनके हुआ है, उनको ऐसा बना लेते हैं कि कोई वो सुपर नेचुरली कोई चीज है। और आम हमारे जैसे लोग जी, हम कैसे दीन के ऊपर चलते, तो वो तो वो बड़े पहुंचे हुए लोग, पता नहीं किधर उनको पहुंचा देते हैं कि वो खाने पीने से ही पाक होते हैं। तो इन चीजों को जहन से निकालना चाहिए। हाँ, सब इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये दीन नाजिल फरमाया, वो भी इंसान है जो दीन का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो भी इंसान है जो पैगंबर थे। तो हम अपने आप को एक्सक्लूड ना करें कि हम तो इस दीन पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ऐसे बन ही नहीं सकते। क्यों? वो जो दीन का काम कर रहा है वो भी तो इंसान ही है, आप क्यों नहीं वैसे बन सकते? और वो कोई आपसे ज्यादा खास तो नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी खसूसियात तो नहीं है, और ये दीन प्रैक्टिकल दीन है। तो इस तरह की बातें, ऐसी सोच पाई जाना कि ऐसे कुछ कोई और ही अलग मखलूक होंगे, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह आज ये भी सोच पाई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, बल्कि वो नूरुम मिन नूरिल्लाह थे। आप देख लें ये जो दुरूदे तंजीना या क्या है, उसके अंदर है ना ये कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, कि वो नूर थे अल्लाह के नूर में से। और हर जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप कह दें कि आप बशर रसूल हैं। तो अब आप देखें ना कि ये चीजें फिर दुरुस्त नहीं है, इस तरह के कॉन्सेप्ट रखना। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर फरमाता है, और आपने दरूद में अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद करने के लिए उनको नूर कह दिया। आपकी बात सच्ची है कि अल्लाह की बात सच्ची है? फिर बड़े शौक शौक से वो वाले दरूद पढ़ते हैं कि नहीं जी ये बहुत अच्छा दुरूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें वो उसमें नहीं आपको खासियत लगती। और वो जो लोगों ने बता दिए बना बना के दुरूद, जिसमें कोई शेर क्या है कि कोई ऐसी बात है, वो सही लगते हैं। तो जब हम ऐसे ऐसी बातें करते हैं, तो असल में हम यह प्रूव करना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे। इसी तरह ये कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो साया ही नहीं था जी, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे? क्योंकि इंसानों का तो साया होता है। तो ये सोच रुकावट बनी थी मुशरिकीन के ईमान लाने में। और जब उन्होंने समझा कि इंसान एक काबिले इज्जत चीज नहीं है, बल्कि फरिश्ता काबिले इज्जत है, तो इंसान को रसूल नहीं होना चाहिए, फरिश्ते को रसूल होना चाहिए। और आप नोट करें, इबलीस का भी तो यही काम था ना, उसने भी तो इंसान को घटिया समझा, काबिल इज्जत नहीं समझा था, तभी कहा था मैं क्यों उसको सजदा करूं। यही सोच अगर हमारी हो जाएगी तो ये इबलीस ही सोच है। अच्छा ये भी नोट करें कि वो कहते थे बशर है, इंसान है तो रसूल नहीं हो सकता, आज हम कहते हैं रसूल है तो इंसान नहीं हो सकता। समझ आई बात? वो कहते थे इंसान है रसूल नहीं हो सकता, हम कहते हैं रसूल है वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। तो इस बहस को, इस चीज को, जो कुरान पाक को आप स्टडी करने लगते हैं, तो इस चीज को क्लियर हो जाना चाहिए माइंड्स में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे। ये बड़ी बहस करते हैं लोग। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लौ काना फिल अर्दी मलाइका तुम यमशूना मुतमईनीना, अगर इस जमीन के ऊपर फरिश्ते बसते होते, यहाँ पे चलते फिरते होते इत्मीनान के साथ। इत्मीनान के साथ मतलब क्या कि यहाँ पे रहते बसते होते, यहाँ पे वो रहायश इख्तियार करी होती है उन्होंने, फरिश्ते यहाँ की आबादी होते, तो लनज़लना अलैहिम मिन अस्समाई मलक रसूल, तो हम आसान बात ही अल्लाह ताला आसमान से मलक रसूल बना के भेज देता। अभी बशर रसूल इसलिए भेजा कि सारे बशर ही हैं जमीन पे बसते, अगर मलक होते मलाइका होते जमीन के ऊपर, यहीं पे वो रहते फिरते चलते होते, तो फिर उनको अल्लाह ताला भेज देता। समझ आई बात? अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। फरिश्ते तो वैसे भी जमीन पे आते जाते रहते हैं, लेकिन पैगंबर फरिश्ता बना के क्यों नहीं भेजा, वो क्यों नहीं पैगाम देने आया? इसलिए कि अगर फरिश्ता आता, हम सूरह अनआम में भी पढ़ते हैं, तो वो भी इंसानी शक्ल में ही आता ना। फरिश्ते की असल शक्ल तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इंसानी शक्ल में आता, फिर लोगों ने कहना था ना ये तो हमें तो हम तो कंफ्यूज हो गए, ये तो इंसान ही है। और अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें हैं एक बशर को रसूल बना के भेजने में, वरना मुश्किल नहीं था अल्लाह के लिए कि फरिश्ता आकर पैगाम देता, लेकिन बशर को रसूल बना के भेजा इसलिए कि ये पैगाम जो अल्लाह ने पहुंचाना था, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको दे देना है, उस बशर रसूल ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, रोजा रख के दिखाना है और खाना खा के भी दिखाना है, रात को सो के दिखाना है, सो के नींद तोड़ के जाग के भी दिखाना है, दुखों के ऊपर आंसू बहाने भी हैं और सबर करके भी दिखाना है, खुशी में खुशी मना के भी दिखाना है और हद के अंदर रह के भी दिखाना है, रिश्तों को निभा के भी दिखाना है, रिश्तों के ऊपर सबर भी करके दिखाना है, रिश्तों की तरफ से जब तकलीफ आए दुख आए तो उसके बावजूद रिश्तों को मिला के दिखाना है, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करके दिखानी है और दुश्मनी करके दिखानी है। फरिश्ता कैसे ये कर सकता था? उसकी ना तो ये रिश्तेदारियां यहाँ पे थी, ना उसको कोई नींद आती है, ना वो खाता पीता है, वो कैसे करके दिखाता ये सब कुछ? फिर लोगों ने कहना था जी वो तो फरिश्ता है इसलिए करता है, हम तो बेचारे इंसान, हम कैसे कर सकते, हमारी कहाँ ताकत। तो अल्लाह ताला ने लोगों की इसलाह चाहिए, इसलिए इंसान को फरिश्ता बना के भेज, इंसान को रसूल बना के भेजा, ताकि लोगों का तज़किया हो सके, उनकी जिंदगियां बदल सके। वरना अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता होते, इंसान ना होते, तो हमने फिर ये भी कह देना था, लो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता हमारे क्या हालात हैं, वो कौन सा इंसान थे, वो कौन सा वैसे महसूस कर सकते थे, उनकी कौन सी औलाद थी, क्योंकि फरिश्तों की तो औलाद भी नहीं होती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद का गम भी सह के दिखाया, भूख बर्दाश्त करके दिखाई, जंग में जख्मी होके दिखाया, ये क्या क्या आपने करना जब आपके साथ ऐसा सब कुछ हो। रिश्तेदारों के ऊपर हम बहुत कहते हैं कि वो हमें तंग करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हम क्या करें, तो उन्होंने उनसे ज्यादा किसने रिश्तेदारों से मुखालफतें सही होंगी, उनसे ज्यादा किसने रिश्तेदारों से गम सहा होगा, उनसे ज्यादा किसने औलाद का गम सहा होगा, इनकी सारी औलाद ही उनकी जिंदगी में फौत हो गई सिवाय हजरत फातिमा के, जिनका कोई बेटा नहीं बचा, तो उनसे ज्यादा कौन दीन की खातिर कुर्बानियां देने वाला होगा, दीन की खातिर बातें सुनने वाला होगा, कौन सी चीज में नहीं हमें नमूना मिलता। आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या पता, अगर उन्होंने सही तो उनको क्या पता, हम इसीलिए कह देते ना वो तो बस नहीं जी उनकी तो बात ही ना करें, क्यों नहीं उनकी बात करें, अल्लाह ताला ने उनको एग्जाम्पल बनाया हमारे लिए, हम उनसे ही सीखेंगे और किससे सीखेंगे, क्या उनको दुख नहीं होता था, क्या वो कोई ऐसे सुपर नेचुरल बींग थे कि उनका दिल नहीं था, सब चीजें उनको भी महसूस होती थी, क्या भूख उनको नहीं लगती थी, लगती थी, या तो हम कहें ना कि उनको तो लगती ही नहीं थी, तो इसलिए उनको क्या पता, भूख तो हमें ही लगती है, प्यास उनको नहीं लगती थी, परेशान वो नहीं होते थे क्या, हाँ इंसान थे, सब चीजें उनके साथ भी थी, मगर रिएक्शंस डिफरेंट थे, और यही तो हमने सीखना है कि इन चीजों को कोप कैसे करना है जब हमारी जिंदगी में आए। यही तो हमने उनसे सीखना है कि अपने आप को कैसे संभालना है जब हमारे ऊपर ये हालात आए। उन्हीं से तो हमने सीखना है कि चीजों को बर्दाश्त कैसे करना है। उन्हीं से तो हमने सब्र सीखना है, उन्हीं से तो हमने शुक्र सीखना है, उन्हीं से तो हमने इबादत सीखनी है, सब चीजें उनसे सीखनी है। तो ये कह के एकदम रिजेक्ट ना कर दिया करें, नहीं नहीं ना उनकी तो बात छोड़ो ही। नहीं, बेशक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमने सीखना उन्हीं से है। उन्होंने 100% किया तो हम उसका 10% भी कर लें, बड़ी बात है, लेकिन देखना उन्हीं की तरफ है। बिल्कुल इस चीज को नजर से हटाना दिया करें कि नहीं जी उनसे हमने क्या सीखना, वो तो रसूल थे, उनसे हमने क्या सीखना, ना उन्हीं से सीखना है, ये कहें। इसीलिए अल्लाह ताला ने बशर को रसूल बना के भेजा। और पूरी पूरी उनकी जिंदगी आप देख लेना, इतनी जबरदस्त लाइफ है, इंसान ना हैरान हो जाता है। और इसी में तो कमाल है कि एक बशर होके ऐसा होना, यही तो कमाल है। नूर होके ऐसा होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, तो फरिश्तों में तो बर्दाश्त ही बर्दाश्त है, उनको कौन सा भूख लगती है, उनको कौन सा कोई ऐसे होता है कि दुख से वो बैठ जाए, उनके कौन से बच्चे हैं, उनके कौन से रिश्तेदार हैं, उनके कौन सी बातें सुनने की बात है, ऐसी चीजें उनके साथ नहीं है। यही तो कमाल है कि इनके अंदर वो सारी फीलिंग्स थी जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी वो कमाल की शख्सियत है। ये चीज उनको एक्सलेंस के लेवल पे पहुंचाती है, ठीक है। और हमने उनको बशर से ही हटा दिया तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर कौन सी ऐसी बड़ी बात रह गई, फिर तो कोई कारनामा रह ही नहीं गया। ये तो फरिश्ते भी हर वक्त ही इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी भी करते हैं, उनका ये कमाल नहीं समझा जाता। कमाल इंसान का समझा जाता है जब वो उस लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि वो इंसान है, उसका मुश्किल है। फरिश्तों का क्या, वो तो मैकेनिकल है, उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही बनाया, उनके तो ताकत थोड़ी है कोई नाफरमानी की। लिहाजा इस बात को समझे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कम कर देते हैं जब हम कहते हैं कि वो तो नूर ही थे। तो बस ठीक है, फिर नूर थे तो फिर इस तो फिर तो उनको ऐसे करना ही चाहिए था। आप उनका मकाम समझे कि वो बशर थे, और बशर में सब इंसानों से बुलंद होके उन्होंने दिखाया कैसे उन्होंने एक परफेक्शन का लेवल अटेन किया। ये है कमाल की बात। कुल कह दीजिए, कफा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम, कह दिए काफी है अल्लाह गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान। गवाह इस बात के जो तुम इनकार कर गए हो इसके ऊपर अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला देख रहा है। जो तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो इसके ऊपर अल्लाह देख रहा है। मेरे तो पैगंबर, मेरी नबुवत, मेरी रिसालत के ऊपर भी अल्लाह गवाह है, और तुम्हारे इनकार के ऊपर भी अल्लाह गवाह है। जो तुम रिएक्शन दे रहे हो उस पे अल्लाह जानता है, देख रहा है। इन्नाहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो तो अपने बंदों के हर फेयर से, हर अमल से, हर सोच से, हर बात से बाखबर भी और खुद देखने वाला है। तो वो तुम्हारे सारे इनकार और तुम्हारी सारी ये कि क्यों ये लोग कह रहे थे कि ये दिखाओ मौजा, ये दिखाओ मौजा, असल में बात ये थी कि इनकार है ना अंदर, मानना नहीं है, ये बात है। इसकी वजह से इंसान ये बहाने हैं कि ये दिखा दो, वो मौजा दिखा दो, ऐसे कर दो। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वो ही हिदायत पाने वाला है। वमन युदलिल, और जिसको वो गुमराह कर दे, फलन तजीद लहुम औलिया मिन दूनी, तो वो अपने लिए कोई मददगार नहीं पाएगा अल्लाह के सिवा। देखिए अब ये बात अहम बात है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वो हिदायत पाने वाला है, जिसको गुमराही का अल्लाह ताला फैसला कर ले, जिसको गुमराह कर दे, तो लोगों में से फिर उसके लिए कोई कारसाज नहीं है, तो कोई हिदायत नहीं उसको दे सकता। क्या मतलब है कि अल्लाह जिसको गुमराह कर दे, अब ये हिदायत दे दे वो हिदायत पाने वाला है, ये तो हमें समझ आ जाती है। जिसको गुमराह कर दे इसके ऊपर बड़ा ये इतराजात होते हैं, देखो अल्लाह ने ही गुमराह कर दिया। नहीं, यानी मतलब क्या है इसका कि अल्लाह ताला पकड़ के जबरदस्ती हिदायत के रास्ते पे नहीं लेकर आएगा। जिधर को कोई जाना चाहता है, अगर गुमराही को कोई चूज करता है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा व हदीना हु नजदीन, ये सारी बातें बताती हैं। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते दिखा दिए, चाहे इंसान शुक्र गुजार हो ना शुक्र हो, कुफर करे ईमान लाए, अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं लाएगा। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है इस दुनिया के लिए, को उसने फ्री विल दिया इंसान को, चॉइस दी है इंसान को, वो अपने लिए खुद पसंद करे कि मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना। दिखा दिया अल्लाह ने, हिदायत भी दिखा दी, गुमराही भी दिखा दी। लेकिन कोई गुमराही को खुद पसंद करता है ना, गुनाहों की जिंदगी खुद गुजारना चाहता है, नाफरमानी पे ही चलना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता खुला रखा हुआ है, वो खुद ही नहीं आना चाहता, तो अल्लाह ताला बाजू पकड़ के जबरदस्ती नहीं लेकर आएगा, वरना तो राइट ऑफ चॉइस ही खत्म हो गया। इंसान बुराई के रास्ते में जाना चाहता है, कहता है मैं आजाद हूं, मेरी मर्जी है, मैं इधर ही जाना चाहता हूं, अल्लाह जबरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ, वरना वो कह देगा फिर क्या मेरी राइट ऑफ चॉइस हुआ, अगर मेरे साथ जबरदस्ती की जानी है। लोग आज भी कहते हैं ना कि जबरदस्ती नहीं आप कर सकते, जबरदस्ती इसको मुसलमान नहीं कर सकते, वाकई नहीं कर सकते, ना तलवार के जोर पे कभी किया गया किसी को मुसलमान, नहीं हमारे दीन में है ही नहीं ऐसी कि जबरदस्ती करना हो तो अल्लाह ताला खुद ना किसी को पकड़ के सारों को मुसलमान कर दे अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि उसने फ्री चॉइस दी है इंसान, उसकी विल है। जबरदस्ती करानी होती तो अल्लाह ताला से ज्यादा कौन जबरदस्ती करा सकता था। तो इसलिए हमारा काम नहीं है जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में लाना, ये तो बिल्कुल जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे उतरा, यानी तलवार की नोक पर लोगों की गर्दनों को रख दिया और फिर उनको कहा अब तुम कलमा पढ़ लो, ऐसा कभी नहीं, हमारे दीन में है ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है हमें, क्योंकि अगर इस तरह ईमान लाना होता तो फिर हमें ना कहा जाता, हमारी क्या जरूरत होती है, अल्लाह ताला फरिश्तों को उतार देता, देखे तो यहाँ पे सारे ठीक हो जाते, सीधा कर देते वो सबको। तो लेकिन अल्लाह ताला यही तो चाहता है कि इंसान अपने दिल से, अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से अल्लाह की तरफ आए। जबरदस्ती करने को तो देखो जैसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया, इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को बना देता, वो देखे कर ही रहे हैं ना काम मशीनों की तरह, इंसान भी ऐसे हो जाता, अल्लाह ताला ने खुद उसको चॉइस दी, तुम जाओ तुम जिस रास्ते पे चलना चाहते हो। अब जो अपनी मर्जी के साथ अल्लाह ताला के आगे बिछ जाएगा, झुक जाएगा, अपनी इस फ्री विल को छोड़ देगा कि अल्लाह तूने मुझे आजादी दी है, मैंने ये आजादी नहीं लेनी, मैं तो वही करूंगा जो तू कहेगा, तेरा हुक्म मेरी सर आंखों पे, मेरा सर झुका हुआ, मैंने अपनी मर्जी से अपनी आजादी दे दी, मैं तेरी गुलामी में आना चाहता हूं, ये है जो अल्लाह ताला को मतलूब है, ये है जो अल्लाह का प्यारा बंदा है। तो जबरदस्ती अल्लाह ने नहीं कराने, ये है अल्लाह को पसंद, खुद से आता है, समझ के आता है। तो जो भटकना चाहता है उसको हिदायत नहीं मिलेगी, फिर उसको अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो भटकना चाहता है फिर वो अपने लिए कोई वली नहीं पाएगा, अपने लिए कोई औलिया नहीं पाएगा, कोई मददगार नहीं पाएगा, यानी उसको फिर कोई भी, चाहे कोई नबी, चाहे कोई आलिम का, चाहे कोई दीन का दाई, कोई भी उसको तबलीग कर दे, वो जिसने इरादा कर लिया ना कि मैंने नहीं मानना, तो अब उसके सामने कितनी भी दलीलें ले आए कोई उसको फिर हिदायत नहीं दे सकता, उसका दिल कोई नहीं बदल सकता अल्लाह के सिवा, और ये बहुत डेंजरस मुकाम है, कोई इंसान बस कह दे कि मैंने नहीं मानना। हाँ जो समझता है कि हाँ मैं दलील से बात की जाए, दलील को समझता है फिर इस तरफ को आता है, वो फिर हिदायत पा सकता है, लेकिन जो ये ठान ले मैंने मानना ही नहीं, कोई जितना मर्जी समझा लो उसको कौन हिदायत दे सकता है, तो ऐसे लोगों का क्या हशर होगा। व नहशुरुहुम यौमल कियामति अला वुजूहिहिम उम्यं व बुकमं व सुम्मा, सुम्मन बुकमन उम्यन पहले पढ़ा है ना, उसी को उसकी तरतीब डिफरेंट करके, अंधा गूंगा और बहरा, वो कयामत के दिन अपने मुंहों पे अंधे गूंगे बहरे बना के इकट्ठे किए जाएंगे। अच्छा ये क्यों, अंधे गूंगे बहरे बना के क्यों, और उल्टे मुंह पे होने का मतलब क्या है? सर नीचे और पैर ऊपर। देखा है आपने कभी कभी कोई दीवार के साथ ऐसे करके खड़ा हो जाता है, सर नीचे और पैर ऊपर करके, ये उनका हाल होगा। क्यों ऐसा, ऐसी सजा क्यों? मैंने आपको जैसे बताया था कि जो इंसान का अमल इस दुनिया में होता है ना, उसी की किस्म की सजा उसको कयामत के अंदर दी जाएगी, जैसा जुर्म वैसी सजा। ये लोग जो थे हक को देख के अंधे, हक की बात सुनने से बहरे, हक बोलने से गूंगे थे, यानी अल्लाह का कलाम इनके आगे आ गया, इन्होंने ऐसे करा जैसे ये अंधे हैं, इन्होंने ऐसे किया जैसे ये गूंगे बहरे हैं, ना सुनना चाहते थे ना देखना चाहते थे ना पढ़ना चाहते थे, खुद भी नहीं पढ़ना दूसरे से भी नहीं सुनना, ऐसे लगता था कि जैसे कोई बोझ है इनके ऊपर जो आ गया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और कामों में गुजार दी, लेकिन इस तरफ को नहीं आए। कोई बुलाए भी तो देखे, बुलाने के अगर कोई सुनेगा तो फिर ही कोई बुला सकता है ना, कोई बुलाए तो ऐसे कर देना जैसे सुना ही नहीं, खुद तो पढ़ना ही नहीं है, खुद जानने की कोशिश ही नहीं करनी कि अपनी आंखें यूज कर लें। तो इन्होंने अपनी ये फैकल्टीज यूज नहीं की। अल्लाह ताला ने ये कान आंख जुबान ये इसलिए दिए कि इंसान हक को पहचाने, अल्लाह ताला की बात को समझे जाने, फिर रब ने क्या हुक्म दिया है। लेकिन अगर इंसान ने सारी जिंदगी इन अपनी सलाहियतों को हक बात सुनने समझने देखने में यूज नहीं किया, तो कयामत के दिन फिर जैसे दुनिया में तुम स्पिरिचुअली ऐसे रहे, कयामत के दिन फिजिकली अल्लाह ताला ऐसा कर देगा। तुमने आंखें बंद की थी ना दुनिया में, ऐसे नहीं कि आंखें आप फिजिकली बंद करें, लेकिन कुरान है, नहीं पढ़ना नहीं समझना, दीन की कोई मजलिस के लिए बुलाता है नहीं जाना, अगर चले भी गए तो इतनी देर से गए ताकि कोई बात हमारे कानों में ना पड़े, और अगर कभी ऐसा हो ही गया कि पहुंच गए हैं और अभी तक कोई अल्लाह की बात कही जा रही है, तो आप क्या करें, फिर कहीं कानों में पड़ ना जाए, उठ के इधर उधर हो गए, खिसक गए, कभी किचन में बिजी हो गए, कभी कहीं और चले गए, जब सारी बात खत्म हो गई, अल्लाह ताला की बातें खत्म हो गई, दर्स खत्म हो गया, कुरान की दावत खत्म हो गई, तो फिर कहीं से नमूदार हो गए, फिर लोगों के साथ गपशप शुरू कर दी। इतना ज्यादा अवॉइड करना अल्लाह की बात को, कि ना खुद पढ़ना ना कानों में पढ़ने देना ना किसी से जुबान से बोल के पूछ लेना। एक बंदा होता है कि भाई नहीं, उसको तो खुद नहीं पढ़ सकता, वो पूछ ही लेता है किसी से, भाई मेरी हेल्प करो। तो ऐसे बंदा हिदायत कैसे पा सकता है जो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं, देखने को तैयार ही नहीं? तो इसलिए ऐसे लोगों का अंजाम ये होगा। आज कितने जराए हैं, चलो एक दर्स को छोड़ें, आज कितने जराए हैं, आप सबके पास फोन है, उस पे भी कोई अल्लाह ताला का जिक्र आ जाता है, कोई तिलावत आ जाती है, टीवी पे कभी तिलावत लग जाती है, कोई मैसेज भेज देता है, लेकिन अगर किसी ने कोई बात समझनी ही नहीं है, कोई वीडियो भेज देता है उसको खोलना ही नहीं, कोई मैसेज आया तो उसको पढ़ना ही नहीं, जो ही देख लिया ना ये मैसेज कोई दीन का मैसेज है उसको पढ़ना ही नहीं, कैसे हिदायत मिलेगी? और फिर हम समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता है, हमसे ज्यादा तो हिदायत किसी के पास है ही नहीं। अल्लाह ताला ने ये कान आंखें जुबान ये सब चीजें, ठीक है आप अपनी जरूरियात पूरी करें, अल्लाह ताला ने इसलिए दी है, लेकिन असल इनका मकसद ये कि इनसे रब को पहचान लो। ये है सोर्सेस जो दिमाग तक मैसेज को लेकर जाते हैं, जो देखेंगे वो दिमाग तक पहुंचेगा ना, जो सुनेंगे वो दिमाग तक पहुंचे। आपने उन्हीं को बंद कर दिया, इन डोर्स को बंद कर दी, गेटवेज है दिमाग तक पहुंचने के, समझने के। अब इन गेट्स को ही बंद कर देगा कोई इंसान तो कैसे समझेगा, कैसे पाएगा, रब को की पहचान कैसे आएगी, हिदायत कैसे मिलेगी। तो जब इसने इनसे काम नहीं लिया तो ठीक है, अल्लाह ताला भी जब उनको उठाएगा तो ऐसे उठाएगा कि अंधे गूंगे बहरे होंगे। यही वो जुबानें थी जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रही होती थी लेकिन अल्लाह की बात नहीं बोलती थी। यही वो आंखें थी जिनसे दुनिया जहान को देखा, सैरें की, हर चीज पढ़ी, पढ़ाइयां की, सब कुछ पढ़ा, किताबें भी पढ़ी और भी बहुत कुछ देखा, मगर एक अल्लाह के कलाम को नहीं देखा। यही जो कान थे जो सारी बातें सुनते थे, म्यूजिक भी सुना और दुनिया जहान की और चीजें भी सुनी, हर किस्म की कमेंट्री, हर किस्म के लेक्चर्स इधर उधर सुने, मगर एक अल्लाह की बात की तरफ नहीं आए, उसको नहीं सुनना। तो अब क्या है, अंधे गूंगे बहरे हैं। और कयामत के दिन कैसे उठेंगे, एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन कैसे किसी को मुंह के बल चलाया जाएगा। आप सल्लम ने फरमाया ना कि भी ये इस तरह से ऊंधे मुंह चलेंगे। जहन में आता है ना कि एक तो हम पैरों के साथ चलते हैं तो सर नीचे और पैर ऊपर हो तो चलेगा कैसे इंसान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जात ने दुनिया में दो पैरों के ऊपर चलाया वो कयामत के दिन उसके मुंह के बल चलाने पे भी कादिर है ना। तो जो अल्लाह पैरों के बल चला सकता है तो मुंह के बल क्यों नहीं चला सकता। सोचे कितनी बड़ी जिल्लत होगी उसकी, कैसे मुंह के बल चलता जा रहा होगा, ऐसा क्यों। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी दी थी, मोहलत दी थी, वक्त दिया था, कोई 15-20 साल नहीं रहे जिंदगी के अंदर, बड़ा वक्त था, लेकिन हर जगह अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की, इस तरफ नहीं की। ठीक है चलो, एक इंसान 20-22 साल का होता है, उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो बड़े छड़े हुए होते हैं तो इतनी नहीं समझ होती, लेकिन उसके बाद क्या कभी भी नहीं कोई वक्त आया जिसमें हिदायत पाने के लिए कोई स्टेप उठाते। समझे सारी थी, हर तरह की समझ थी। मैं देखती हूँ लोगों को इतने इतने अक्लमंद होते हैं, इतनी समझदारी की बातें कर रहे होते हैं, ला इनको कितना नॉलेज, कितना हर एक टॉपिक पे बोल रहे हैं, लेकिन अगर दीन की बात आ जाएगी तो बिल्कुल कोरे। इधर की उधर, उसमें भी वो समझते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इधर की उधर मारेंगे, उधर की उधर मारेंगे, समझ आ जाती है कि दीन के मामले में बिल्कुल ही सफाया है। तो जिंदगी की कितनी बाहरें देखता है इंसान, 30 का होता है, 40 का होता है, 50 का होता है, क्या कभी फुर्सत नहीं मिली। गिने के 50 साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कोई घंटा भी नहीं था जो अल्लाह के लिए हो, कोई दिन भी नहीं थे मिले। ये 60 साल के हो जाएं तो फिर तो इंसान को बिल्कुल होश पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई उजर जो होगा उसका, कोई एक्सक्यूज जो होगा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मगर 70-80 साल के भी हो जाते हैं फिर भी यही हाल होता, और इसी हाल के अंदर लोग देखते हैं कि क्लब्स भी ज्वाइन किए हुए हैं, किटी पार्टीज भी हो रही हैं, अपने शौक भी पूरे किए जा रहे हैं, और बहुत बाज दफा तो लोग बड़े खुश होकर कहते हैं बहुत लाइवली हैं ये आंटी, बहुत लाइवली हैं, ऐसा होना चाहिए, बहुत जिंदा दिल है। क्या जिंदा दिली है ये, आप जिए जरूर, खुश भी रहें, अपने सेहत भी की भी फिक्र रखें, सब कुछ करें, लेकिन ऐसे नहीं कि सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एक अल्लाह ताला का ख्याल नहीं जिसकी तरफ वापस लौटना, एक उसी तरफ ध्यान नहीं है, और जितना इससे दूर है उतने ही लाइवली समझे जाते हैं, उतने ही जिंदा दिल है। तो बस सारी चीजों का और होश है, जो जवानी में करते थे वो ही बुढ़ापे तक, वो ही शौक पूरे नहीं हो रहे अभी तक, और अभी तक भी अल्लाह ताला की तरफ ध्यान नहीं है, अभी तक भी तौबा की तरफ की तौफीक नहीं मिली। तो किसकी उम्र में भी पहुंच जाए, कभी भी ये ना सोचे कि वापसी का रास्ता नहीं है। अभी भी इंसान सोचे कि जिस उम्र में भी मैं हूं, मुझे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहना कि अब आधी उम्र गुजार दी, अब आ गई हो। अभी भी अगर होश आ जाता है तो हिदायत की तरफ आ जाए। मवाहुम जहन्नम, मगर जो लोग सारी जिंदगी इन्हीं कामों में पड़े रहते हैं, हिदायत का कोशिश ही नहीं करते कि कभी उनको हिदायत मिल जाए, कभी उनको ये रास्ता मिल जाए, तो क्या है उनका ठिकाना? फिर जहन्नुम है। कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब कभी आहिस्ता होने लगेगी उसकी आग ज्यादा कर देंगे हम उनको भड़काने में। वो और ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि जहन्नुम की आग जल जल के, एक दिन चलो कोयले भी जल जल के ठंडे हो जाते हैं, आप बारबेक्यू करते हैं उसकी भी आग फिर जल जल के, तो जब तक आप उसको फ्यूल ना करते रहे तो वो तो खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जहन्नुम की आग जल जल के पता नहीं कब से जल रही, अब तो खत्म हो ही जाएगी। नहीं, जब कभी धीमी होने लगेगी उसको और भड़का दिया जाएगा, कम तो कभी होगी नहीं। तो हिदायत इतनी बड़ी जरूरत है, हिदायत इतनी बड़ा खजाना है कि इंसान इसके बगैर सोचे उसका हाशर क्या है, कि मुंह के बल घसीटा जाना और सुमुन बुकमुन उमियन करके उठाया जाना। फिर भी लोग अगर आज तक ये ना समझे कि कोई हिदायत की हमें जरूरत है, हम तो खुद ही हिदायत याफ्ता हैं जी, पैदाइश ही हिदायत याफ्ता, हम पैदा ही हिदायत पे होते, कुरान की क्या जरूरत थी फिर? क्या जरूरत थी सोचे ना, अगर हम सारे इतने अक्लमंद थे, हम इतने समझदार थे, हम पैदा होते से ही समझदार हैं, क्या नहीं हमें पता? फिर कुरान की तो जरूरत थी ही नहीं। क्या जरूरत थी फरिश्ता भेजने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतना कुछ बर्दाश्त करने की, इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए क्या जरूरत थी? पढ़े पढ़ाए हम उतरे हैं और सब कुछ हमें आता है, हमें खुद समझ है। तो आज बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि उनको हिदायत की जरूरत है। तो पहले तो ये मानने की जरूरत है कि मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें ये सिखा दिया कि तुम कहा करो कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की, कहा करो, मांगा करो अपने लिए। अगर नहीं जरूरत थी, अगर अकलमंद थे हम इतने, तो क्या जरूरत थी ये कहलवाने की? ये हमारे रगत में ये कहते फिरते, हम बैग करते हैं अल्लाह ताला से, कितनी दफा बैग करते हैं दिन में? कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जो नमाज के बगैर हो, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जो हिदायत की दुआ के बगैर हो, चाहे और कोई दुआ मांगे ना मांगे, लेकिन जो भी नमाज पढ़ने वाला है वो ये दुआ मांगता है। इसका मतलब हमें जरूरत है, और बल्कि जरूरत ही नहीं, सबसे बड़ी हमारी जरूरत है कि हमें हिदायत मिल जाए। हिदायत के बगैर जिंदगी क्या है? अंधी जिंदगी है, इसकी बेसमत जिंदगी है, को डायरेक्शन लेस जिंदगी। लेकिन दुख इसकी बात यह है कि फिर भी बहुत सारे लोगों को आज भी ये बात समझानी पड़ती है कि भाई आपको हिदायत की जरूरत है। हर कोई समझता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं हिदायत की, मैं हिदायत याफ्ता हूं। अल्लाह हू अकबर। तो अगर जरूरत ही नहीं महसूस करेंगे तो फिर हिदायत पाएंगे कहाँ से? फिर उसकी तलाश कैसे करेंगे? फिर उसके लिए कोशिश कैसे करेंगे? फिर उसके लिए वक्त कैसे निकालेंगे? जिसको जो समझता ही नहीं कि मुझे जरूरत है, क्यों आएगा फिर वो इस तरह? जालिका जजा ओहम भी अन्ना कफरू भी आयातिना, ये इनकी जजा है कि बेवजह इसके कि बेशक उन्होंने हमारी आयात का इनकार कर दिया था, हमारी आयात को नहीं माना। और कौन सी आयात को नहीं माना? ना कुरान की आयात को माना, ना इनको समझा, ना इनको अपनी जरूरत जाना, ना कायनात की आयात को देखकर कुछ अल्लाह ताला को पहचाना। आयात तो बिखरी पड़ी है, कुरानी आयात भी इसमें है और कायनात की और अनफुस की आयात भी। अपने नफ्सों में ही झांक के देख लो, अपनी जानों में ही तुम देख लो, उसके अंदर इतनी निशानियां हैं, सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोगों ने कहीं भी नहीं गौर किया, وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. और उल्टा क्वेश्चन करने लगे लोग, भला हम जब क्या हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे, दोबारा भला हमें नहीं तखलीक करके खड़ा किया जाएगा? कैसे हो सकता है अल्लाह हमें खड़ा कर दे जब हम ऐसे चूरा चूरा हो जाए, हमारी जिस्म भी हमारे चूरा चूरा हो जाए? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्यों नहीं? अवलम यरून अल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध क़ादिरुन अला अन यख़लुक़ मिस्लहु, क्या वो अल्लाह कादिर नहीं है कि इनको पैदा करे, इन जैसों को पैदा करे, वो अल्लाह जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा कर दिया? इतनी बड़ी कायनात, आसमानों जब कहा जाता है ना, तो इसमें ये सारी कायनात आ जाती है, ये सारा यूनिवर्स आ जाता है इसके अंदर जब आप आसमानों कहते हैं। आसमान सिर्फ ये आसमान नहीं जो नीला आसमान आप देख रहे हैं, ये सात आसमान है। और अब तो साइंस ने जितना कुछ देखा है, कलील कलील इल्म जो हमारे पास है, उस पे भी इंसान की अकल दंग रह गई है, दंग रह गई है, हैरान है, परेशान है साइंसदान कि ये कायनात कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी कायनात, इतनी सी जमीन हमारी, इस जमीन पे कितना कुछ है, कितना कुछ है। आप समंदर देख लें, दरख्त देख लें, मछलियां देख लें, चरिंद परिंद देख लें, हैवानात देख लें, इंसान देख लें, कितना कुछ है जमीन के ऊपर। वो सारा कुछ मिला के ये आप ही की एक जमीन बनती है, जो कि एक जमीन है इस सोलर सिस्टम में, इस निजाम शमसी में एक जमीन है। इस तरह के कई निजाम शमसी मिला के एक गैलेक्सी बनती है, वो कई गैलेक्सीज मिला के एक क्लस्टर बनता है। और पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है ये कायनात, कितनी इसके अंदर कहकशाएं, कितने इसके अंदर सितारे सैयारे हैं कि वो कहते हैं ट्रिलियंस ट्रिलियंस, साइंसदान कहते हैं हम गिनती नहीं कर सकते, ट्रिलियन ट्रिलियन कह के उन्होंने अपनी, अब उससे ज्यादा क्या गिनती तो इंसानों की भी खत्म हो जाती है। गिनती तो इंसानों की एक लिमिट है ना गिनती की भी, बेचारे क्या करें। इतना कुछ जिस रब ने बना लिया, अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा, क्या तुम ज्यादा मुश्किल हो, ज्यादा शदीद हो तखलीक में, पैदा करने में, या आसमान? अल्लाह ने उनको बना लिया तो तुम ही नहीं बना सकता। वजाल लहुम अजल ला रैबा फी, और उसने मुकरर कर दिया एक वक्त जिसमें कोई शक नहीं, हमेशा के लिए नहीं बना दिया सब कुछ, एक वक्त मुकरर है इसमें सब खत्म हो जाना, एक मुय्यन मुद्दत तक के लिए बनाया, बस इतनी तक ये कायनात है, ऐसा वक्त मुकर्रर है जिसमें कोई शक नहीं। वो अजल कौन सी है, इंसान की मौत भी हो सकती है और क़यामत का वक्त भी हो सकता है जिसमें कोई शक नहीं। तो क्या अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। एक वीडियो थी जिसके अंदर उन्होंने ऐसे दिखाया, सुभान अल्लाह, एक आंख से शुरू किया, आंख के अंदर की पुतली से शुरू करके फिर वो ऊपर 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 ले जाते गए हैं, जैसे एक बनाई हुई है ना, जैसे एक फिर जमीन को दिखाया, फिर सितारों सैयारों, फिर ऊपर कायनात के अंदर चले गए, फिर नीचे को आए कि कितनी छोटी चीज एक इंसान की आंख, और फिर कितनी बड़ी ये कायनात। तो इंसान हैरान हो जाता है, उसकी अकल जो है ना इंसान की कॉम्प्रेहेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अकल भी बेचारी महदूद है ना। वो समझते तो हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज है कि इंसान है तो पता नहीं हम क्या हैं, हमारी अकलों के जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी महदूद है, लिमिटेड है। तो उसको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे बनाया, क्योंकि वो अपने जैसा समझता है ना, कि हम सोचेंगे चूरा चूरा हो जाए, कोई अल्लाह माफ करे जहाज क्रैश हो जाता है तो इंसानों के अज़ा कहाँ कहाँ बिखर जाते हैं और रुल जाते हैं और मिलते ही नहीं है कि किधर, ना ये समझ आती किसका कौन सा। तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे लिए मुश्किल है तो फिर कहाँ ये इस तरह जब चूरा चूरा हो जाएंगी हड्डियां तो फिर कैसे होगा। तो ये जो मुश्किल है ये हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारी ताकत लिमिटेड है, हम महदूद है। अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो आला कुल्ली शैइन कदीर है। आज भी बाज लोग इस किस्म के शोशे निकालते हैं, इस किस्म के लोग हैं जो ऐसी बातें निकाल के स्टैंड आउट करना चाहते हैं कि जी हमने देखो कितना वो निकाला, देखो जी कैसे ऐसे हो सकता है, देखो जी मैंने कितना अच्छा पॉइंट निकाला कुरान से, इस तरह हो कैसे सकता है। ऐसी सी बातें, ऐसी सी फजूल चीजें इसमें से निकालते हैं, जैसे वो लोग एतराज करते हैं जी कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। तो कहीं ऐसी कोई बातें हो ना तो उनको ना पढ़े भी नहीं, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आगे फैलाने की जरूरत नहीं। जैसे इन्होंने सोचा चोड़ा ना, इस तरह इनके सोचे हैं आज इंटरनेट पे कितने बिखरे पड़े। अगर कोई कोई कार्टून बना लेता है तो देखने की जरूरत नहीं है कि मैं जरा खोल के देखूं, इसलिए कि ये लोग जो है ये इन्हीं चीजों पे थ्राइव करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें शोहरत मिले। इस तरह जितने लोग सर्च करेंगे वो उतने ही ज्यादा उनकी सर्च जितनी बढ़ेगी, जाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतनी वो उनको इससे फायदा होगा। कभी उनको पैसे मिलते हैं, कभी और चीजें होती हैं, उनका उनको शोहरत मिलती है, यही चाहते हैं वो। तो ऐसी चीजों को जो ऐसे शकुक शुभार डालें, कैसे करेगा, कैसे अल्लाह ताला ऐसे करेगा, वो तो चूरा चूरा वाकई। अगर आप हाथ में एक से मट्टी रख के देखें, अल्लाह जाने इसके अंदर, इस मट्टी के अंदर किस कितने जानदारों के जर्रे हों या किसी इंसान के जर्रे हों उसकी बॉडी के, हमें क्या पता। तो अब हम सोचते हैं हाँ ही माँ के ही पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीजों को ना ऐसे लोग ऐसी चीजों से शकुक को शुभार डालते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, और भी कई बातें। अभी पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने लिखा कि वो यानी जो भी इंडिया में हो रहा था तो उसके ऊपर जो कमेंट्स थे वो उन्होंने जब पढ़े तो वो कहने लगी कि ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट्स दिए हुए थे कि आप तो जंगे भी नहीं है, तो जंग की आयात क्यों है कुरान में, और क्यों ऐसे कहा गया कि इनको मारो या कैसे। तो वो ऐसी बातें पढ़ के कहने लगी कि मेरा खुद ही हाल हो गया कि मेरा ईमान लो हो गया, कि मेरे दिल में शकों को शुभात आने लगे, तो मुझे बचाएं। तो देखें इसी तरह एक और बता रही थी कि कोई बड़ा दीनदार आदमी था, प्रैक्टिसिंग था, तो वो मुर्तद हो गया क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जो बातें बेहुदा और जो किस्म के फितने ये फितना परवदास बातें करते हैं, और कुरान के ऊपर इतराजात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे करते हैं। तो जब किसी इंसान के पास खुद नॉलेज नहीं होता ना, तो वो ऐसी बातों में पढ़ के उसका अपना ईमान जा सकता है, वो मुर्तद हो गया बंदा, निजाम छोड़ दिया उसे। तो देखिए ये पहले कभी ये हदीस पता नहीं इतनी लोगों को समझ आती होगी कि नहीं आती होगी कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन अब अच्छी तरह ये हदीस समझ आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सुबह को मोमिन होगा शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर हो जाएगा, तो वाकई समझ आती है। कोई एक लहजे के लिए, एक पहर के लिए भी इंटरनेट पे बैठता है और ऐसी चीजों को सर्च करता है तो ईमान में शकुक व शुभात पैदा करने वाले आ जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो डाउटफुल कर देते हैं बंदे को, दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगते हैं। शैतान तो वैसे ही पीछे लगा, वो खुद इल्म है नहीं। तो ये भी इंसानों की सूरत में शैतान बैठे हुए इंटरनेट पे, जिनका मकसद ही है कि बस लोगों के अंदर ना, जब आपको दीन से नफरत दिलाएंगे, ऐसी बातें डाउटफुल बातें करेंगे, खुद ब खुद एक इंसान दीन से बदजन हो जाएगा और उसे दूर होने लगे। तो मैं आपको यही कहूंगी, ऐसी चीजें ना देखें ना पढ़ें, क्यों अपने आप को खुद फितने में डालते हैं। हाँ वो लोग जो आलिम दीन है, जिनके पास मजबूत इल्म है, वो इनको जवाब देने के लिए जरूर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप खुद मुझे बताएं, टॉयलेट है, टॉयलेट फ्लश नहीं हुआ हुआ, उसके अंदर गंदगी है, तो देखना चाहती हैं आप कभी? नहीं, घिन खाते हैं आप। ये भी बातें इसी किस्म की खलीज और गंदी है, क्यों उनको सर्च करते हैं और क्यों उनको हम देखना चाहते हैं और क्यों उनको हम पढ़ना चाहते हैं कि क्या लिखा है इसने, क्या जरा मैं देखूं तो सही, क्यों? वो गंदगी है, ठीक है? तो इसलिए इन चीजों के पीछे नहीं जाना हमने। आप देख लें कि उस वक्त भी मुनाफिकीन का काम क्या होता था, वो जो कमजोर मुसलमान या कमजोर ईमान वाले होते, या भी नए नए मुसलमान हुए होते, सबका ईमान तो अबू बकर सिद्दीक और उमर वाला नहीं था। तो तो वो उनके दिलों में शक को शुभात पैदा करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, देखो जी या तो इनके पास खाने को नहीं, कैसे और किसरा के महलों की बातें करते हैं, ऐसे हमसे तो बड़े वादे किए थे कि जी आपकी दुनिया भी चुक जाएगी, आज तो हमें इतना खतरा है कि हम अपनी जान बचाने के भी उस पे हैं, पता नहीं इस तरह की बातें करके मुसलमानों को बदजन करना। देखो किबला बदल गया, भला इनको पहले नहीं पता था कौन सा किबला रखना है, अब इन्होंने किबला बदलने की बात है। तो ये नई बातें नहीं है, हर दौर में ऐसे लोग गुजरे, मगर आज हमारे घरों में चूंकि ये नेट के थ्रू हमें सारी चीजें मालूम हो जाती हैं, और हम जिस साइट पे भी जाएं या जिन मर्जी लोगों की बेकार और बुरी बातें हम सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो आज घर घर में ये फितना फैल रहा है, और वो अपनी आवाजें कहाँ तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी आवाज को हम बंद नहीं कर सकते, मगर हम उनकी बातों को ना सुन के उनसे गूंगे बहरे बने, उनसे ऐसे होंगे जैसे है ही नहीं, उनसे सुमन बुकमन उम्यून हो जाए। ठीक है, हम अपने दीन के बारे में सुमन बुकमन उम्यून है, और ऐसी बातें पढ़ने का बड़ा शौक रखते। देखूं तो सही इन्होंने कहा क्या, आजकल सुना है फलाने ये बात कही, क्या कही है, मैं उसको देखूं। जो भी कोई कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, कोई भी बकवास बातें कर रहे हैं, उनको नहीं सुनना हमने। ठीक है, अब अलम यरो, अच्छा ये बात हो गई, फअबा ज़ालिमुना इल्ला कुफूरा, तो इनकार किया जालिमों ने मगर कुफर का, कुफर में तो आगे बढ़े मगर बाकी सब चीजों का इनकार किया, जैसे पहले आया फाबा अक्सर उन्नासी इल्ला कुफूरा, तो इनकार किया अक्सर लोगों ने मगर कुफर का। तो यहाँ पे भी ये आया कि जालिम है, इसका मतलब अक्सरियत लोगों की जालिम है, क्योंकि वहां पे कहा गया अक्सरियत लोगों की ने इनकार किया मगर कुफर का इनकार नहीं किया, बाकी सब बातों का इनकार किया, जो उनको बातें समझाएंगे उनका इनकार, यहाँ पे कहा वो जालिम है जो जो लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने हर बात का इनकार कर दिया। हम नहीं मानते कि उठाए जाएंगे, हम नहीं मानते कि एक कयामत ऐसी आएगी, हम नहीं मानते कि गली सड़ी हड्डियों से भी इंसान को दोबारा खड़ा कर, हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, लेकिन हाँ कुफर को हम मानते। तो ये जो बात कहना है ना कि अल्लाह ताला कैसे खड़ा करेगा, तो हदीसे कुदसी में आता है अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम मेरी तकजीब करता है, और उसको ये जेब नहीं देता कि वो मेरी तकजीब करे, और उसकी तकजीब करना क्या है, झुठलाना क्या है अल्लाह ताला को कि वो कहता है कि वो कैसे जिंदा करेगा, जब एक दफा इंसान को मौत आ जाएगी कैसे जिंदा करेगा, ये है अल्लाह को झुठलाना। ठीक है, तो ये मामूली बात नहीं है। कुल लौ अंतुम तमलिकून खजाइन रहमती रब्बी इजल अमसकतुम खशियत अल इन्फाक, कह दीजिए अगर तुम होते मालिक खजानों के, अपने रब की रहमत के खजानों के तुम मालिक होते ना, तो क्या करते, तब रोक लेते तुम खर्च हो जाने के डर से, तुम इस डर से कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं सारा ही ना खत्म हो जाए, तुम रोक लेते। बास तफसीरों में यह है कि रहमत रब्बी से मतलब यह है कि ये कुरान अगर तुम्हारे पास होता, यहूद को कहा जा रहा है अगर तुम्हारे पास होता तो तुम इसको ना इस तरह से बयान करते, और इसमें बुखल करते बयान करने में, और इसको अपने पास रोके रखते। और दूसरा जो माना हमें ज्यादा समझ आता है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला की नेमतें जो उसकी रहमत है, जैसे बारिश है, रिज्क है, नबुवत तो खास ही नेमत है ना जो एक बंदे को मिली, लेकिन और भी जितनी नेमतें हैं, अगर अल्लाह ताला इनका मालिक इंसानों को बना देता ना, तो इंसानों का तो हाल ये है कि खर्च ही ना करते, किसी को देते ही ना, किसी को भी ना देते कि खत्म हो जाएगा मेरा। इसीलिए तो आप देखें ना कि आज अगर इंसान के हाथ में हो ना, और कई लोगों को कहते हुए भी सुना है कि शुक्र है अल्लाह ने अपने हाथ में रिस्क रखा है, इंसानों के हाथ में होता तो हमें दोने वाले भी ना देते, वाकई ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला कैसा है, उसका जर्फ देखें कि हर काफिर को भी दे रहा है, मोमिन को भी, फरमा बरदार को भी, नाफरमान को, और कब से खिला रहा है, कब से पिला रहा है, कब से खर्च कर रहा है इंसानों के ऊपर। जब से इंसान पैदा होता है, जब से ये जमीन और आसमान बने हैं, तब से अल्लाह ताला खर्च करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और उसको ये डर नहीं है कि मैं खर्च करूंगा खत्म हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे खजाने नहीं रहेंगे इतने। नहीं, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। इंसान के पास करोड़पति भी है ना, वो भी देते हुए उसका दिल ऐसे होता है। आप देख लें, कहीं डोनेशन देना हो, कहीं उनका, वो भी हाय इल्ला माशाल्लाह, कोई लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये होता है एक दफा दे दिया, दो दफा दे, नहीं, मेरा खुद भी कहीं कम ना हो जाए, कहीं खर्च करती रहूंगी, कहीं मेरा खत्म ही ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तूने अपने हाथ में रखे, अगर इंसानों के हाथों में दे देता तो क्या हाल होता, कैसे इंसान तो खर्च करने में क्या है, वकान इंसानों का अधूरा, इंसान खर्च करने में तो बड़ा बखील है, नहीं देना चाहता, इसका हाथ ही नहीं खुलता। तो ये रहमत के खजाने अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे, और अल्लाह ताला इंसानों का हाल बयान करता है कि उनकी बखीली का क्या हाल है, इनको दे दिया जाता तो ये इसका हक अदा ना करते, कि हक तो ये था ना कि आगे दें, आगे से आगे बांटे, ये ना अदा करते। तो ये भी अल्लाह की रहमत है, ये उसकी किताब कुरान। तो ये भी कहा गया कि अगर काफरों के हाथों में ये होती तो ये इसको कभी भी खर्च ना करते, आगे ही ना देते, इसका हक ना अदा करते। तो क्या हमने हक अदा कर दिया? ये अल्लाह की रहमत है ना, ये जो हमें मिली है, हमें अल्लाह ने इसका मालिक बनाया है, हमने क्या हक अदा किया है या इसको रोक के रखा हुआ?